3 नवंबर शुक्रवार का दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले हर दिन तेज होता जा रहा है चुनावी रैलियों का शोर।
गुजरात में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी क्योंकि सच्चाई हमारे पास है।
गुजरात की मौजूदा सियासत का करेंगे विश्लेषण। विवेचना में आज बांग्लादेश के इतिहास की सबसे हृदय विदारक घटना को करेंगे याद।
My father actually did not die. He died of bleeding. They heard my father asking for water. But that was
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। इराक और सीरिया सीमा के कब्जे वाले क्षेत्र से तथाकथित इस्लामिक स्टेट का दबदबा कम हो रहा है। सीरिया के राष्ट्रीय चैनल ने घोषणा की है कि सेना ने सभी आईएस चरमपंथियों को सीरिया के आखिरी बड़े शहर से भागने को मजबूर कर दिया है। पूर्वी शहर देर अल जऊर में आईएस चरमपंथियों की खासी मौजूदगी थी। सरकार समर्थित सेनाओं ने कहा है कि वे अल कईम नामक मुख्य क्षेत्र में दाखिल हो चुके हैं। सेना के एक अनाम प्रवक्ता ने कहा, कई ऑपरेशंस के बाद हमारी सशस्त्र सेनाओं ने गठबंधन सेनाओं के साथ मिलकर देर अल जऊर शहर में सुरक्षा और स्थिरता को वापस कायम कर दिया है। हमने इस्लामिक स्टेट समूह की लड़ाई को समाप्त किया है। भोपाल में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा के साथ गैंग रेप के मामले में शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार ने 6 पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस खबर पर और जानकारी के साथ भोपाल से शुरह नियाजी।
इस मामले में लापरवाही बरतने पर जीआरपी समेत 3 थाना प्रभारियों को और 2 एसआई को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गैंगरेप मामले को लेकर आला पुलिस अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहीं उन्होंने केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की बात भी कही। घटना 31 अक्टूबर की है, जब यह छात्रा कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी शहर के हबीबगंज स्टेशन के नजदीक 4 आरोपियों ने उसे डरा धमकाकर गैंगरेप किया। पुलिस पर आरोप है कि वो लड़की और उसके परिवार को इधर से उधर घुमाती रही और वारदात के 24 घंटे बाद केस दर्ज हो पाया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चौथे की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में अमेरिका की यात्रा से लौटे हैं और उन्होंने वापस आकर मध्य प्रदेश को महिला सशक्तिकरण के मामले में अमेरिका से बेहतर बताया था।
पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती संतान दीना वाडिया का 98 साल की आयु में न्यूयॉर्क स्थित घर पर निधन हो गया है। लंदन में पैदा हुई दीना ने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय मुंबई और अमेरिका में बिताया था और जीवन में 2 बार ही वह पाकिस्तान गई थी। कई जीवनी लेखकों का कहना है कि उनका बचपन बेहद निराशा में बीता और उनका अधिकतर पालन पोषण नौकरों और उनकी नानी की देखरेख में हुआ। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन के न्यायाधीश बेल्जियम में मौजूद कैटलोनिया के पूर्व शीर्ष नेता कार्लस पुज़ेमोन के खिलाफ यूरोपियन अरेस्ट वारंट जारी कर सकते हैं। मैड्रिड हाई कोर्ट ने कल कैटलोनिया सरकार के 8 पूर्व सदस्यों को हिरासत में लेने का आदेश दिया था। उनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस ने पुष्टि की है कि पश्चिमी अफ्रीका में इबोला महामारी के दौरान करोड़ों डॉलरों का गबन हुआ है। लेखा परीक्षकों का कहना है कि 2014 में इस संकट की शुरुआत के बाद नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से 6% पैसा गायब हुआ। लाइबेरिया में उन लोगों को करीब 30 लाख डॉलर तनख्वाह दी गई जो कर्मचारी थे ही नहीं। इसराइल ने कहा है कि ड्रूज समुदाय की इस्लामी विद्रोहियों से रक्षा करने के लिए वह सीरिया सीमा के पार हस्तक्षेप करने को तैयार है। इसराइली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हादर में ड्रूज समुदाय के गांवों को नुकसान से वह रोकेगा। हाल ही में गांव के नज़दीक एक आत्मघाती हमलावर के विस्फोट में लोग मारे गए थे और 20 से अधिक घायल हुए थे। पापुआ न्यूगिनी स्थित ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हिरासत केंद्र को ना छोड़ने वाले तकरीबन 600 शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत खाना पानी और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया को कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यह समूह उस जगह को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें स्थानीय लोगों से डर है। अत्याचारों की रिपोर्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने हाल में हिरासत केंद्र को बंद करने का फैसला लिया था। रूसी सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात को लेकर बातचीत चल रही है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और फेसबुक पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। जैसे जैसे गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप और दावों का दौर तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और पाटीदारों के कार्यक्रम में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसी कड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आज एक बार फिर गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वलसाड़ की रैली में राहुल गांधी ने कहा,
गुजरात में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी क्योंकि सच्चाई हमारे पास। आप जितना भी दम लगा लो, हर समाज आंदोलन चल रहा है, कोई खुश नहीं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का दावा। बहरहाल, मैंने आपसे कुछ देर पहले गुजरात के गांधीनगर में वरिष्ठ पत्रकार आर के मिश्र से बात की और जानना चाहा कि गुजरात में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर, जिन्हें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बताया जा रहा है, इन तीनों का उदय कैसे हुआ, कैसे इनकी राजनीति की शुरुआत हुई।
देखिए, ये बीजेपी के ही अपने प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां उन्होंने खुद खड़ी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी यहाँ से दिल्ली गए, उनके जाने के बाद, और चूंकि आनंदीबेन पटेल जो हैं वो उनकी चॉइस थी, तो कोई बोल तो सकता नहीं था, तो उन्होंने अंदर से उन्हीं के नेताओं ने षड्यंत्र शुरू किया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आनंदीबेन पटेल जिस तरह से नरेंद्र भाई बड़ी लंबी इनिंग खेल गए हैं, इस तरह आनंदीबेन भी काफी चलेंगी, एटलीस्ट जब तक नरेंद्र भाई हैं तब तक तो चलेंगी। ये षड्यंत्र जो अंदर से शुरू हुए, तो वो अब बड़ी आयरॉनिक बात ये है, पटेल नेताओं ने इनको अंदर से एक तरीके से पाटीदार का इश्यू रेज, काफी कुछ परेशानियां यहाँ से पैदा हुई। बाकी पाटीदार के दूसरे नेता जो थे, पहली पाटीदार महिला मुख्य प्रधान के सामने खड़े होकर दिए गए, वो मामला उस तरीके से था कि भाई एक इशू उठा दिया गया, और वो लोग जो नेता जिन्होंने वो इशू उठाया था वो खुद उस पे हावी नहीं हो सके और उनकी पकड़ ढीली हो गई, और उन्होंने जाने अनजाने में इतना बड़ा शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया था। हार्दिक पटेल सरकार ने, उस वक्त आनंदीबेन पटेल की सरकार थी, उन पर दमन गुजारा, उन पर सेडिशन के केसेस लगाया, जितना जोर आजमाया गया उतना ही वो युवा है, वो लड़का जो है उभर के आ गया। फिर आप वहां से चलते हैं ओबीसी नेता की तरफ, अल्पेश ठाकुर, ओबीसी का भी बहुत बड़ा वर्ग है। अल्पेश ठाकुर जब इमर्ज हुए, फैक्टर्स ज्यादातर वही हैं, यूथ में परेशानियां, जॉब्स की कमी, बातें बड़ी बड़ी सरकार की, जमीन पर कुछ नहीं, उन सब चीजों से जो इश्यूज खड़े हुए। यहाँ पर शराबबंदी है और शराब छूट से मिलती है, और वो चूंकि गांव-गांव में बनती है और दो नंबर की पूरी इकोनॉमी खड़ी हो रही है, तो अल्पेश ठाकुर उस इशू को लेकर के चले थे। उनको शुरुआती दौर में कैबिनेट के अंदर के ही एक मंत्री सपोर्ट कर रहे थे, और वो जब बड़ा जब हो गए काबू नहीं कर सके। उसके बाद जिग्नेश मेवाणी, दलितों की नेतागिरी वो शुरू हुई, प्रॉब्लम्स तो थे ही, प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद जब उना का चार दलित युवकों का प्रस्तावन किया गया और वो जो मामला पूरा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी आ गया और वो बात फैल गई, उसमें से नेतागिरी जिग्नेश मेवाणी की शुरू हुई। जो दलित नेता भी थे, जो चूंकि सरकार के साथ जो थे कुछ, वो तो इफेक्टिवली कुछ कर नहीं सकते थे, और दलितों के भी इश्यूज बहुत बड़े थे, तो वो इश्यूज सारे बाहर आ गए। इस तरीके से ये तीन नेता खड़े हो गए। बीजेपी की अपनी अंदर की लड़ाई, अंदरूनी ना समझ कहिए या जिस तरीके की कहिए, राजनीतिक खेल सही है, ये तीनों नेता खड़े हो गए हैं।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार आर के मिश्र, जो गुजरात में हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर के उदय के बारे में बता रहे थे। यहाँ हम आपको बताते चलें कि गुजरात में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री पता चलेगा 18 दिसंबर को, जब वोटिंग होगी। और अब रुख कर रहे हैं झारखंड का। झारखंड में पुलिस ने नक्सलियों के स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य को बड़े ही फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ न केवल 36 मामले दर्ज थे बल्कि 45 लाख रुपये का इनाम भी उनके सिर पर रखा गया था। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
चाईबासा जेलब्रेक के आरोपी नक्सली मोतीलाल सोरेन उर्फ संदीप दा फुटबॉल खेलते हैं और उन्हें फुटबॉल मैच देखने का भी शौक है। फुटबॉल के प्रति उनकी इसी दीवानगी के कारण अब वे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने उन्हें सारंडा के जंगलों के बीच बसे लतार कुंद्रीझोर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। अपनी गिरफ्तारी के वक्त वे वहां चल रहा फुटबॉल मैच देख रहे थे। झारखंड पुलिस प्रवक्ता एडीजी आरके मल्लिक ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि संदीप दा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। उनके खिलाफ 36 मामले दर्ज थे, इनमें कई लोगों की हत्या के भी आरोप शामिल हैं। एडीजी आरके मल्लिक ने बताया,
फुटबॉल मैच अरेंज करवाया था, वहीं पर इंफॉर्मेशन था, उसी इंटेलिजेंस पर लोगों ने उसको उठाया वहां से। वो इनाम के राशि के डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी जिम्मेवारी सुपरना पुलिस की है। तो द अमाउंट इज गिवन टू एसपी, एसपी प्रपोजेज अ प्लान, उस प्लान को हम लोग इंटीमेट करता है और अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। केसेस है, तो बहुत ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उससे हम लोगों को काफी उस एरिया में राहत मिला है इसके गिरफ्तारी से।
संदीप दा को गिरफ्तार करने की पुलिस टीम ने भी गांव वालों के कपड़े पहन लिए थे ताकि किसी को संदेह नहीं हो। पुलिस को इसकी सूचना थी कि संदीप दा वहां फुटबॉल मैच देखने आने वाले हैं। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अनीश गुप्ता के नेतृत्व में गई पुलिस टीम ने संदीप दा को सैकड़ों लोगों के सामने से गिरफ्तार किया। वे वैसे तो गिरिडीह के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों से पश्चिमी सिंहभूम और इससे सटे उड़ीसा के इलाके में सक्रिय थे। जनवरी 2011 में पहली बार हुए चाईबासा जेलब्रेक के दौरान संदीप दा फरार हो गए, तब से पुलिस को उनकी तलाश थी। स्थानीय पत्रकार कमल विश्वास ने बीबीसी को बताया कि गांव वालों के बीच पैट बनाने के लिए नक्सली अक्सर फुटबॉल मैचों का सहारा लेते हैं, क्योंकि कुल्हान क्षेत्र के हो आदिवासियों में इसका बड़ा क्रेज है। कमल विश्वास ने बीबीसी को बताया,
सर वो बोला कि संदीप आया हुआ, वो भी कुछ देर के लिए शायद खेलेगा। तो इसी सूचना पे, प्रशासनिक सूचना पे पुलिस जो है 9 लोगों की टीम बनाई और सीधा वहाँ पहुँच गई, और ये लोग सिर्फ टारगेट किए संदीप को, तुरंत उसको गिरफ्तार किए, तुरंत उसको ये किए और उसको गाड़ी में लेके निकल गए। उस वक्त जो है मतलब ये मतलब खेलने वाला भी था, मतलब कुछ देर के लिए खेलता, एंटरटेनमेंट तो कुछ नहीं है, नहीं एंटरटेनमेंट है।
संदीप दा की गिरफ्तारी के बाद कोल्हान इलाके में सक्रिय नक्सलियों को धक्का लगा है। अब पुलिस भी अतिरिक्त तौर पर सतर्क है, क्योंकि उसे अंदेशा है कि नक्सली इस गिरफ्तारी के विरोध में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल झारखंड में नक्सलियों की गहरी पैठ है। हालांकि कुछ जगहों पर प्रतिद्वंद्वी नक्सली संगठनों की आपसी लड़ाई की खबरें भी मिलती हैं, लेकिन इसका कोई बड़ा असर नहीं होता। पुलिस इनके संगठन में फूट की खबरें भी फैलाती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाती। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
सेना का काम देश की रक्षा करना है या पुल और सड़क बनाना? मुंबई में फौज को एक फुटब्रिज बनाने के काम में लगाया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में भी फौजियों से काम लिया गया। फौज को सिविल कामों में लगाना कितना उचित? क्या लोकतंत्र की सेहत के लिए ये ठीक है? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 4 नवम्बर को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और दिन भर में अब आपको इंतजार होगा साप्ताहिक विवेचना का। शेख मुजीब और उनके परिवार की जघन्य हत्या के बाद बांग्लादेश के इतिहास की सबसे हृदय विदारक घटना 42 साल पहले आज ही के दिन यानी 3 नवंबर 1975 को घटी थी, जब जेल में बंद अवामी लीग के 4 शीर्ष नेताओं ताजुद्दीन अहमद, सैयद नजरुल इस्लाम, कैप्टन मंसूर अली और कमरुज्जमा की ऑटोमेटिक हथियारों और संगीन भोंक कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की 42वीं बरसी पर रेहान फजल बता रहे हैं क्या था पूरा मामला आज की विवेचना में।
बहुत खून बहाने के बाद मिली थी आजादी बांग्लादेश को। आजादी मिलने के 24 दिन बाद जब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल से छूटकर वापस ढाका पहुंचे थे, तो ऐसा लगा मानो पूरा देश ही उनके स्वागत में ढाका हवाई अड्डे पर पहुंच गया हो। लेकिन 4 सालों के भीतर ही न सिर्फ शेख मुजीब बल्कि उनके पूरे परिवार को एक सैनिक विद्रोह में मार डाला गया। लेकिन शायद इससे भी हृदय विदारक था मुजीब के 4 निकट सहयोगियों सैयद नसरुल इस्लाम, ताजुद्दीन अहमद, कैप्टन मंसूर अली और कमरुज्जमा की जेल के सीखचों के पीछे नृशंस हत्या। बांग्लादेश की आज़ादी के दौरान भारत में बनी बांग्लादेश की पहली सरकार के प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद की बेटी शर्मीन अहमद आजकल अमेरिका में रहती हैं। उनको अभी तक याद है जब शेख मुजीब की हत्या के कुछ दिनों के भीतर उनके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
इमीडिएटली आफ्टर हिज असैसिनेशन वी वर पुट अंडर हाउस अरेस्ट विद इन अबाउट से 3 आवर्स।
शेख मुजीब की हत्या के 3-4 घंटे के भीतर ही सेना के जवान आए थे और हमें हमारे घर पर ही नजरबंद कर दिया गया था। 22 अगस्त को उनसे कहा गया कि उन्हें बातचीत के लिए खूनकर मुश्ताक अहमद और उन लोगों के पास ले जाया जा रहा है जिन्होंने शेख मुजीब की हत्या की साजिश रची थी। इससे पहले वो उन लोगों की शेख मुजीब के बाद राष्ट्रपति बनने की पेशकश ठुकरा चुके थे। जाते समय मेरी माँ ने उनसे पूछा था कि आप वापस कब आएंगे, क्योंकि वो उन्हें बातचीत के लिए तो ले जा रहे थे लेकिन उन्होंने उनसे अपने कपड़े भी साथ ले जाने के लिए कहा था। जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने मेरी माँ से हाथ हिलाकर कहा कि ये मान कर चलो कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा।
इस बीच शेख मुजीब के हत्यारों के खिलाफ ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ के नेतृत्व में एक और सैनिक विद्रोह हुआ। समझौता हुआ कि खोंडकार मुश्ताक अहमद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और मुजीब के हत्यारे अपने परिवार समेत बांग्लादेश छोड़ देंगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने तय किया कि वो ढाका की सेंट्रल जेल में बंद मुजीब के 4 निकटतम सहयोगियों की हत्या कर देंगे। शेख मुजीब पर किताब लिखने वाले और बांग्लादेश के मशहूर पत्रकार सैयद बदरुल एहसन बताते हैं।
तो खोंडकार मुश्ताक अहमद का रेपुटेशन ये कि उन्हें हर वक्त राइट विंग माना जा रहा था और उनके बारे में ये एलिगेशन भी है कि 1971 में जब जंग चल रहा था तो वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस एग्जाइल गवर्नमेंट के। वो जाने वाले थे सितंबर 71 में यूनाइटेड नेशंस में, मगर उस वक्त ये खबर मिली है उस प्राइम मिनिस्टर ताजुद्दीन को कि वो वहां जाकर बांग्लादेश गवर्नमेंट इन एग्जाइल की पॉलिसी यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश इसको छोड़ के वो वहां न्यूयॉर्क में जाके पाकिस्तान के साथ एक कॉन्फेडरेशन करेंगे। जब ये इन्फॉर्मेशन इन्हें मिला तो उनको रोक दिया गया, उनके जगह किसी और को भेज दिया गया। फिर ये खोंडकार मुश्ताक ये याद रखे ही बिकेम वेरी इनिमिकल ये 4 लीडर्स के बारे में। और जब कू हुआ अगस्त 15 को तो इन्हें जो मेजर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स या कर्नल्स थे इनके साथ इनका रास्ता पहले से ही था, तो फिर उस सुबह को इन्हें कॉमर्स मिनिस्टर उनको कॉमर्स मिनिस्टर खोंडकार मुश्ताक को प्रेसिडेंट बना दिया गया। 20 तारीख को इन 4 नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया और 30 नवम्बर जेल में वो जेल में जाकर जो मर्डर थे एसेसिन थे शेख मुजीबुर रहमान के ये लोग जाने वाले थे बैंकॉक, मगर जाने से पहले ये कुछ लोग कुछ एसेसिन वहाँ ढाका सेंट्रल जेल में गए। वो अंदर जाना चाहे एकदम रात को जेल सुपरिंटेंडेंट वो तो इन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे थे, कानून भी नहीं है। फिर बंगो भवन यानी कि प्रेसिडेंट हाउस कहा जाता है कि खोंडकार मुश्ताक अहमद उन्होंने फोन करके इनको बताया ये जेल सुपरिंटेंडेंट को ये लोग इन लोगों को आने दीजिए, ये जो करना चाहते करने दीजिए।
इस घटना का और विस्तृत ब्यौरा एंथनी मैस्करन हिस ने अपनी किताब बांग्लादेश ए लेगेसी ऑफ ब्लड में दिया है।
रशीद ने मुझे टेप रिकॉर्डेड इंटरव्यू में बताया, 4:00 के आसपास टेलीफोन की घंटी बजी, मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं DIG प्रिजन बोल रहा हूँ, क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से बात कर सकता हूँ। रशीद ने फोन खोंडकार मुश्ताक अहमद की तरफ बढ़ा दिया। राष्ट्रपति ने कुछ समय तक सुना कि वो शख्स क्या कह रहा था, फिर उन्होंने धीरे से कुछ कहा, फिर मैंने उन्हें जोर से कहते हुए सुना हाँ हाँ हाँ। मैं समझ नहीं पाया कि क्या कह रहे थे वो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज की अनुमति दे रहे हों।
ताजुद्दीन अहमद की बेटी शर्मीन अहमद ने उन सब लोगों से बात की है जो उस रात ढाका की सेंट्रल जेल में घटनास्थल के आसपास मौजूद थे।
अराउंड 3:40 मिस्टर अब्दुल समद आजाद ही वोक अप टू से हिज तहज्जुद प्रेयर एंड टू रीड द कुरान।
सुबह 3:40 पर अब्दुल समद आजाद अपनी सुबह की नमाज और कुरान पढ़ने के लिए जगे। उन्होंने जेल के बाहर कुछ शोर सुना, फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग अंदर आए हैं, उनके साथ जेलर भी थे। उन्होंने पहले मंसूर अली को उनकी कोठरी से निकाला। वो बहुत विचलित दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें इतनी सुबह सुबह क्यों जगाया गया है। दूसरे कमरे में कमरू सभा साहब थे, उनके साथ आवामी लीग का एक कार्यकर्ता भी रह रहा था। मैंने उससे भी बात की, उसने बताया कि कमरू समाज साहब सिर्फ पायजामा पहने हुए थे क्योंकि वो सो रहे थे। जाने से पहले जब उन्होंने कमीज पहनने की कोशिश की तो मैंने देखा कि उनके हाथ बुरी तरीके से कांप रहे थे। वो उन दोनों को अलग कर मेरे पिता के कमरे में ले आए, जिसमें वो सैयद नजरुल इस्लाम के साथ रह रहे थे। उन्होंने उस कमरे में रह रहे दूसरे लोगों को निकाल कर दूसरे कमरे में भेज दिया। उन लोगों में से एक मोहसिन बुलबुल ने मुझे बताया कि वो हथियारों का चिल्लाना साफ साफ सुन पा रहे थे। वो पूछ रहे थे कि इतना समय क्यों लग रहा है, हमारे पास इतना समय नहीं है। जेल के एक सिपाही ने करीब करीब धक्का देते हुए कमरुज़मा को मेरे पिता के कमरे में पहुंचा दिया।
जैसे ही ताजुद्दीन अहमद ने उन सबको अपने कमरे में लाए जाते देखा, वो समझ गए कि कुछ बुरा होने वाला है।
When they gathered them together in the room, my father immediately told Sayyid Nazrul Islam when they're coming.
जब उन्होंने सबको मेरे पिता के कमरे में इकट्ठा किया, उन्होंने फौरन कहा, नजरुल साहब, हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है, आइए हम लोग वजू कर ले। जैसे ही उन्होंने वजू किया, जेलर चारों हथियारों के साथ उनकी कोठरी के सामने पहुंच गया। बाद में जेलर ने मेरी छोटी बहन को बताया कि उसे ये पता ही नहीं था कि ये लोग उन्हें मारने आए हैं। वो इन नेताओं का हथियारों से परिचय करा ही रहा था। कैप्टन मंसूर का परिचय कराते हुए वो इतना ही कह पाए, वो अपना शब्द भी पूरा नहीं कर पाए कि हथियारों ने ऑटोमेटिक हथियारों से गोली चलानी शुरू कर दी। उन्होंने कुल 60 राउंड गोलियां चलाई, वो चारों जमीन पर गिर गए।
60 राउंड गोलियां चलने के बाद भी ताजुद्दीन अहमद और कैप्टन मंसूर अली की मौत तुरंत नहीं हुई।
My father actually did not die. He died of bleeding.
मेरे पिता तुरंत नहीं मरे, वो बाद में खून बह जाने की वजह से मरे। अगर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता तो वो बचाए जा सकते थे। एक गोली उनकी निचली कमर से घुसकर दूसरी तरफ निकल गई थी। एक गोली उनके पैर के निचले हिस्से में लगी थी। एक और गोली उनके बाह और सीने के बीच से निकल गई थी, लेकिन उनके महत्वपूर्ण अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। फिर लोगों ने सुना कि मेरे पिता रह रहे थे और पानी मांग रहे थे, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि जेल प्रशासन का कर्तव्य बोध कहाँ चला गया था। उन्होंने कैसे बाहरी लोगों को जेल में घुसने दिया? गोली चलाए जाने के बाद वो उन लोगों को अस्पताल क्यों नहीं ले गए? बाद में मैंने और मेरी बहन ने ये जानने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ था, उन सब लोगों से बात की। उन्होंने हमें बताया कि इन हथियारों ने आते ही हमसे कहा कि हम इन चारों नेताओं से मिलना चाहते हैं। हमने उनसे कहा भी कि आप हथियार लेकर जेल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को जान से मारने आए हैं।
मैंने शर्मीन से पूछा कि क्या ये सही है कि मारे गए कुछ नेताओं को संगीन भोंक कर मारा गया था?
जी हाँ, मेरी बहन इसकी गवाह है। मंसूर अली के शव को उनके एक रिश्तेदार के घर में लाया गया था। वहाँ लोगों ने देखा कि उनकी आंखों और पेट में संगीन फूंकी गई थी। जैसे ही हथियारों का पहला गुट वहाँ से गया, एक दूसरा गुट ये जानने के लिए वहाँ पहुँच गया कि ये लोग जिंदा है या मर गए। जब ये लोग वहां पहुंचे तो मंसूर अली अभी भी जीवित थे और कराह रहे थे। उन्होंने उनकी आवाज बंद करने के लिए उन्हें संगीन फूंक दी।
उधर जब ये खबर बंग भवन पहुंची तो बांग्लादेश मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी। खोंडकार मुश्ताक अहमद ने ढोंग किया जैसे उन्हें इसके बारे में पता ही ना हो।
मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने वाली ही थी कि डायरेक्टर ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस एयर कमोडोर बदहवास हालत में चिल्लाते हुए जेल में हुई हत्याओं की खबर लेकर आए। सुनते ही खोंडकर मुश्ताक अहमद वहां मौजूद दूसरे लोगों की तरह ही अपने रंज का इजहार करने लगे, जैसे उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही न हो। वास्तव में मुश्ताक अव्वल दर्जे का ढोंग कर रहे थे।
मारे गए नेताओं के परिवारों को पूरे 48 घंटे बाद उनके शव सौंपे गए।
नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ 4th नवंबर अराउंड 8:39 माय
अगली सुबह 4 नवंबर को सुबह 8:30 या 9 बजे मेरे पिता के कॉलेज के दिनों की दोस्त डॉक्टर करीम मेरी माँ से मिलने आई। मैं अपनी माँ की बगल में ही खड़ी थी। उन्होंने ये खबर दी कि ढाका सेंट्रल जेल के अंदर फायरिंग हुई है। جیل کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے پتا اور ان کے تین ساتھیوں کی ہتیا کر دی گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اور میری ماں گھر کے باہر کھڑے تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ سنا وہ بالکل جم سی گئیں۔ میں بہت زور سے چلائی اور بولی میں اسے نہیں مانتی۔ اسی شام اس بات کی پشٹی ہو گئی کہ واستو میں انہیں مار ڈالا گیا تھا۔
صرف تین دن کے بھیتر ہی بریگیڈیئر خالد مشرف کے سینک ودروہ کے خلاف ایک دوسرا سینک ودروہ ہو گیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الرحمان ستہ میں آئے۔ 21 سال تک اس بربر ہتیا کانڈ کی کوئی جانچ نہیں ہوئی۔ 1996 میں شیخ حسینہ کے ستہ میں آنے کے بعد اس پورے معاملے کی جانچ پھر سے شروع ہوئی۔ کچھ لوگوں کو پھانسی پر بھی چڑھایا گیا۔
جب وہ شیخ مجیب الرحمان کے اسیسینیشن کا جو ٹرائل ہوا، اس وقت 6 اسیسن تھے، ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ اور یہ خود ہی اسی معاملے میں بھی تھے۔ کچھ اور ابسکونڈنگ ہے، یا بی ایم پی کے بیگم خالدہ ضیاء کے ٹائم پہ پھر ایک ٹرائل کیا گیا، مگر وہ ایک وائٹ واش جیسا تھا۔ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایک رسالدار تھے بنگلہ دیش آرمی میں، مسلم الدین، وہ ایک شخص جا کے ان چاروں کو ہتیا کر گیا۔ وہ مجھے انبیلیویبل۔ اور پھر یہ جو رسالدار مسلم الدین ہے، 75 کے بعد یہ کہاں گئے اور ان کا کوئی ویئر اباؤٹ، اب کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئے، وہ بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔
ان چاروں نیتاؤں کے کچھ ہتھیارے ابھی بھی قانون کی پکڑ سے باہر ہیں اور بنگلہ دیش کے باہر گمنام زندگی جی رہے ہیں۔ میں نے شرمین احمد سے پوچھا، کیا آپ سمجھتی ہیں آپ کو نیائے مل پایا؟
آئی تھنک دوز ہو آر ایٹ لارج دے آر سفرنگ بیکاز دے ہیو ٹو فار ایور۔
میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اب بھی بھاگے ہوئے ہیں ان کو بھی ایک طرح سے سزا ہی مل رہی ہے۔ ان کو ہمیشہ کے لیے پوری دنیا سے چھپ کر رہنا ہوگا، یہ بھی تو ایک طرح کی سزا ہے۔ ان لوگوں کے لیے میرا سندیش ہے کہ آپ کسی کو مار کر غلط کو صحیح نہیں کر سکتے۔ ان کے بھی بچے ہیں، ان کا بھی پریوار ہے۔ ان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ یہی ہوتا تو ان کے بچوں اور پریوار پر کیا گزرتی۔ یہ لوگ راشٹر نیتا تھے، وہ دیش کو ابھی بھی بہت کچھ دے سکتے تھے۔ ان کو انہیں مار کر ملا کیا؟ ان لوگوں میں بہت سے راجنیتک شڈینترکاری بھی تھے۔ ان کو سزا دلانے کے لیے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس معاملے کی پھر سے جانچ ہونی چاہیے۔ میں ایسا بدلے کی بھاونا سے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ جو غلط ہوا اسے صحیح کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہوں۔
ریحان فضل، BBC دلی۔
اور کھیل سماچاروں کے لیے سوریانشی پانڈے اسٹوڈیو میں آ چکی ہیں۔
جاپان میں چل رہے مہیلا ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں بھارت نے جاپان کو 4-2 سے ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کی۔ وہیں چین ساؤتھ کوریا کو 3-2 سے ہرا کر فائنل میں پہنچی۔ اب بھارت اور چین کے بیچ ایشیا کپ کا آخری مقابلہ کھیلا جائے گا۔ فائنل مقابلہ 5 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ اور اب خبر کرکٹ کے میدان سے۔ کل گجرات کے راجکوٹ میں بھارت بنام نیوزیلینڈ T20 سیریز کا دوسرا مقابلہ کھیلا جائے گا۔ راجکوٹ میں ہونے والے مقابلے سے پہلے T20 سیریز کے پہلے مقابلے میں بھارت نے نیوزیلینڈ کو 53 رنوں سے ہرایا تھا۔ دلی کے فیروز شاہ کوٹلا میں یہ مقابلہ کھیلا گیا تھا۔
کھیل سماچار سنے آپ نے سوریانشی پانڈے سے، اور تھوڑی دیر میں بجیں گے بھارت میں رات کے 8۔ وقت ہو چلا ہے کارکرم کے سماپن کا، لیکن پہلے سنیں گے مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔
سیریا کے راشٹریہ چینل نے گھوشنا کی ہے کہ سینا نے سبھی IS چرم پنتھیوں کو سیریا کے آخری بڑے شہر سے بھاگنے کو مجبور کر دیا ہے۔ بھوپال میں سول سروسز کی تیاری کر رہی 19 سال کی چھاترا کے ساتھ گینگ ریپ کے معاملے میں شکروار کو مدھیہ پردیش سرکار نے 6 پولیس افسروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پاکستان کے سنستھاپک محمد علی جنہ کی اکلوتی سنتان دینا واڈیا کا 98 سال کی آیو میں نیو یارک استھت گھر پر ندھن ہو گیا ہے۔ اسپین کے نیادھیش بیلجیم میں موجود کیٹلونیا کے پورو شیرش نیتا کارلس پوزیمونڈ کے خلاف یورپین اریسٹ وارنٹ جاری کر سکتے ہیں۔ انتراشٹری سنستھا ریڈ کراس نے پشٹی کی ہے کہ پشچمی افریقہ میں ایبولا مہاماری کے دوران کروڑوں ڈالروں کا گبن ہوا ہے۔ BBC سماچار۔
مکھ سماچار سنا رہے تھے محمد شاہد، اور اس دوران کارکرم کا تکنیکی پکش سنبھالا دیواشیش کمار نے۔ فیس بک کے ذریعے ہمیں آپ تک پہنچایا انت پرکاش نے۔ دن بھر میں آج اتنا ہی۔ سندیپ سونی کو سمست سہیوگیوں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ شبھ راتری۔